अब यहाँ ईमान वालों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं जिनका ताल्लुक दीन में आने वाले मुश्किल हालात से है। कभी वो जंगों की सूरत में आता है, कभी मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के साथ जो मामला पेश आता है उसकी तरफ है। आयत नंबर 71, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़रकुम फनफिरू सुबातन वनफिरू जमीया। ए लोगो जो ईमान लाए हो मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहो। हाईलाइट करें इसको, हर वक्त तैयार हूँ। क्या मुश्किल है जी, इसलिए कि कुरान पूरी ज़िंदगी के लिए है। अल्लाह की नेमतें हर वक्त खाते हैं, अल्लाह ताला की रहमतों में हर वक्त हैं। तो ये जो दीन को हमने पार्ट टाइम दीन बना लिया ना, इसने भी हमारा माइंडसेट ख़राब कर दिया। फिर जैसा मौका हो अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे होकर। हाँ, तुम में से कोई कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है। क्या पता चला कि मुख्तलिफ हालात में दीन के तकाजे हमसे मुख्तलिफ होते हैं। कभी इनफरादी कोशिशों की ज़रूरत होती है तो कभी इज्तमाई की, कभी हमारी तन्हाई की इबादत हमें अल्लाह का कुर्ब देती हैं तो कभी हमें इज्तमाई तरीके पर अल्लाह के दीन के लिए काम करना फ़ायदा देता है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इन दोनों पर अमल की तौफीक दे। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फ़ज़ल किया है कि मैं इन लोगों के साथ ना गया, और अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर फजल हो तो कहता है, इस तरह कहता है गोया तुम्हारे और इसके दरमियान मोहब्बत का कोई ताल्लुक ही ना था। यानी मुनाफिक जो होता है ना, वो वक्त देखकर निस्बतें बदल देते हैं। वो कहते हैं ना, तेल देखो तेल की धार देखो, और वो देखता है कि इस वक्त दीन पे अमल करने में मेरा फ़ायदा है कि नहीं। इफ आई विल डू दिस फिर क्या होगा, बट आई डोंट वॉन्ट लाइक, यानी इफ्स एंड बट्स में पड़े रहते हैं। तो याद रखिए, अल्लाह ताला आपसे मुझसे मुकम्मल मोहब्बत मांगता है, डिवोशन, पूरे के पूरे मेरे बन जाओ, पूरे दिल से मेरे बन जाओ, फिर देखो मैं तुम्हें क्या देता हूँ। वरना हालात क्या होते हैं ऐसे लोगों का, फिर अमूमन मामला क्या होता है, क्या कहते हैं, काश मैं भी इनके साथ होता तो बड़ा काम बन जाता। यानी जो इस्लाम की अच्छे दिनों में अपने आप को दीन में लाएं और मुश्किल आते ही इस्लाम से दूर हो जाएं, तो वो लोग जो है इस्लाम के काम के नहीं होते। ऐसे वहाँ लोगों को मालूम हो कि अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए, उन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी को फ़रोख्त कर दें, फिर जो अल्लाह की राह में लड़ेगा और मारा जाएगा या गालिब रहेगा। ये तीन चीज़ें होंगी ना, या लोग शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, पहले लड़ाई होती है, या फिर आप शहीद हैं या आप गालिब हैं। इसे ज़रूर हम अजर अजीम अता करेंगे। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में इन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कमज़ोर पाकर दबा लिए गए और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी और मददगार पैदा कर दे। अल्लज़ीना आमनू युकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, जिन लोगों ने ईमान का रास्ता इख्तियार किया है वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जिन्होंने कुफर का रास्ता इख्तियार किया है वो तागूत की राह में लड़ते हैं। बस शैतान के साथियों से लड़ो और यकीन जानो कि शैतान की चालें हकीकत में नहायत कमज़ोर हैं। देखिए, इस आयत में एक बहुत बड़ा सबक है। कोशिशें तो सभी करते हैं, मेहनतें तो सारे ही करते हैं, कुछ की कोशिशें फ़ी सबीलिल्लाह और कुछ की कोशिशें फ़ित दुनिया या फ़ी सबील तागूत हैं। मेहनत तो सभी करते हैं, आपने कभी सुना होगा कि एक फ़िल्म जो बनती है उसमें कितने ख़तरों से गुज़रते हैं लोग। बाज़ दफ़ा पहाड़ों से छलांग लगाने में टांग की हड्डी तक टूट जाती है। वो कहते हैं हम इसको नेचुरली फिल्माना चाहते हैं। आप ज़रा सोच के देखिए कि उनको उसमें क्या मिलता है। और जब एक इंसान अल्लाह के रास्ते में हल्की सी भी तकलीफ़ लेता है, हल्की सी भी मुश्किल लेता है, तो अल्लाह ताला उसको उसका कितना खूबसूरत बदला देते हैं। तो आप वो सब लोग खुशकिस्मत हैं जिनको अल्लाह के रास्ते में कोई आजमाइश आई, कोई तकलीफ़ आई, और वो उस पर सब्र करके जमे रहे, खड़े रहे। अल्लाह ताला आपको मुझे इस पर जमा दे। तुमने इन लोगों को भी देखा जिनसे कहा गया कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब जो इन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया तो इनमें से एक फरीक का हाल ये है कि लोगों से ऐसा डर रहे हैं जैसे अल्लाह से डरना चाहिए या कुछ इससे भी बढ़कर। कहते हैं खुदाया ये हम पर लड़ाई का हुक्म तूने क्यों लिख दिया, क्यों ना हमें अभी कुछ और मोहलत दी। मक्का में थे कुछ लोग तो कहते थे अल्लाह के नबी इजाज़त तो दीजिए ज़रा इन काफ़रों के साथ हम मुकाबला करें, या अबू जहल को मज़ा चखा दें, फलां को कर दें। लेकिन तरबियत की गई। यहाँ एक दीन का बड़ा खूबसूरत असूल है कि ऐसे जाके कामों में कूद नहीं पड़ना चाहिए। पहले सबसे तस्किया करता है, फिर तरबिया होती है, फिर कई इजाज़त मिलती है। मक्का के 13 साल इतनी आजमाइशें थी, इतनी चोटें लग रही थी, दुश्मन आपके ऊपर क्या कुछ कर रहे थे, लेकिन सबको एक ही हुक्म था, कुफ्फ अयदीकुम, हाथ बंद रखो, स्टॉप, हैंड्स डाउन, ऊपर नहीं देखना। क्यों? ابھی تمہاری تربیت ہو رہی ہے. جب دین کے نام پہ آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں نا تو ہماری تربیت ہوتی ہے اس میں, تزکیہ ہو گیا. پھر مدینہ میں جانے کے بعد حکم دیا, ٹریننگ دی گئی. آج بھی دین کا کام کرنے کا یہی بہتر طریقہ ہے. یاد رکھیے, بغیر تزکیہ کیے اگر صحابہ کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی جاتی تو وہ فی سبیل اللہ نہ لڑتے, وہ فی سبیل نفس لڑتے, آپس میں ایک دوسرے کو مار دیتے. کیا آج ایسا نہیں ہوتا؟ کچھ لوگ مل کے دین کا کام شروع کرتے ہیں, چند مہینے ساتھ رہتے ہیں, پھر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں. وجہ کہ اس کی بات نہیں اچھی لگی, اب میں ساتھ نہیں چل سکتی, ہم ساتھ نہیں جاتے, اب ہم دو گروہ بنا لیتے ہیں, نہیں ہم کٹ رہے ہیں, ہم الگ مسجد بنا لیں گے, آدھے نمازیوں کو ادھر لے جائیں گے. یاد رکھیے, یہ دین نہیں ہے. آپ کو اپنی خواہش, اپنی رائے کو ترک کرنا اجتماعی فائدے کے لیے, تاکہ لوگ بھی جڑے رہیں, دین کا بھی فائدہ ہو, یہ اصل میں اجر کی بات ہے. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ کے کہتے ہیں کہ باتیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں, لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو مہلتیں مانگتے ہیں, پھر ان کو ریلیکسیشنز چاہیے ہوتی ہیں. ان سے کہو, دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک اللہ سے ڈرنے والے انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے, اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. رہی موت تو وہ تم جہاں بھی ہو, بہرحال تم کو آ کر رہے گی, خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. کبھی موت کو آتے وقت ٹائم لگا؟ پر میں سوچیے, اگر ابھی بھی اس وقت ہماری موت چل پڑی ہو تو یہ در و دیوار اس کو روکیں گے, یہ سیڑھیاں اس کو روکیں گی, یہ لفٹ ہماری موت کو اوپر چڑھنے سے روکے گی؟ نہیں روکے گی. اس لیے ہر وقت تیار رہیں, اور ہر وقت جو شخص تیار ہوتا ہے نا, اس کی باتوں سے, اس کے عمل, اس کے کال سے یہ دکھتا ہے کہ واقعی یہ بات میرے لیے کتنی ضروری ہے. ورنہ تو ہوتا کیا ہے, دوسرا کردار, اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے, اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے. دیکھیے ذرا, زبان کھلتی ہے نا تو نبی کے اوپر بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ, کہتے تھے جو تکلیف ہم مسلمانوں کو آتی ہے نا, اللہ کے نبی, یہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آتی ہے, اور کام تو سارا ہم کرتے ہیں. یہ جرت کی بات ہے, غلط چیزوں کی نسبت لیڈر کی طرف کر دینا اور خود کو پیچھے ڈال دینا, اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا. مثلا دیکھیں, ایک شخص کو آپ کسی چیز کا منتظم بناتے ہیں, وہ سب کو کہتا ہے آپ کا یہ کام ہے, آپ کی یہ ڈیوٹی ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. اب سب لوگ اگر اس کام کو کرتے رہیں گے, اپنے وقت سے پہلے وہاں پہنچیں گے, اپنی ڈیوٹی کر کے اینڈ پہ جائیں گے, سارا سسٹم ٹھیک ہوگا. اور اگر ان میں 10 میں سے 5 لوگ ہٹ گئے, 5 وہاں رہے, سسٹم بگڑے گا. تو اینڈ پہ کیا کہیں گے, فلاں چونکہ مینیجر تھا, فلاں چونکہ انچارج تھا, اس کی وجہ سے پروگرام اچھا نہیں ہوا, وہ کیا کرے گا. تو زندگی میں ہر بندہ اپنے آپ کو ایک قیمتی ہیرا سمجھے, اپنے آپ کو کہا کرے میں ہوں وہ اینٹ کہ جس کے لگنے سے اسلام کی عمارت خوبصورت ہوگی. میں نے ہر رول ماننا ہے, میں نے ہر بات کو ماننا ہے, ہر حکم میرے لیے قرآن میں اترا ہے. میں نہیں مانوں گی تو اس کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. پھر دیکھیے کتنی خوبصورت امت تیار ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذمہ داریاں لینے اور ان کو نبھانے والا بنا دے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے, آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے انسان, تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے, سچ ہے کہ نہیں؟ جو کچھ آپ کے میرے پاس ہے کس نے دیا؟ ہماری کوئی خوبی تھی, ہمارا کوئی اچھا عمل تھا؟ تو ہر نعمت کو اللہ کی نظروں سے دیکھیں, اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے. کبھی تکلیف ہو, اللہ نہ کرے بچہ بیمار ہو جائے, اللہ نہ کرے شوہر کا مزاج بگڑ جائے, آپ کی کوئی مشین خراب ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, فوراً خود کو پوچھیں میں نے کیا غلط کیا, میری کوئی غلطی ہے جو ادھر آ گئی ہے. آپ دیکھیے گا ایسے کلک کر کے نشانے پہ آپ کے بعد جائے گی کہ آپ حیران ہوں گے. آگے ہم پڑھیں گے حضرت داؤد کا ایک قصہ سورۃ سواد میں, کہ بات کسی اور کی چل رہی تھی, اس میں ان کو اپنی فالٹ نظر آ گئی. تو تقویٰ جو ہے نا, یہ اندر کے چوکی دار کو زندہ کر دیتا ہے. ذرا ذرا بات پہ وہ آپ کا محاسب بن جاتا ہے, اور آپ اپنے آپ کو پھر اس نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ واقعی قصور تو میرا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کو پرکھنے والا بنا دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا, اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی, اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے آپ کو ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, اور وہ منہ پر کہتے ہیں ہم مطیع فرمان ہیں, مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. دیکھیں یہ بھی نفاق ہے. जब आप एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाते हैं ना, जब आप एक मीटिंग में गए, आपको पूरी आज़ादी दी गई कि राय दें, आपको अच्छी बात बुरी बात, आपको एक सजेशन बॉक्स दिया गया कि आप उसमें अच्छी बातें लिखें, उसमें नेगेटिव बातें लिखें, फीडबैक दें, उसके बाद फिर उस बात को किसी तीसरे से करना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करना, ये इंसान को हलाक करने के काबिल है। ये मुनाफिकों की बातें, नबी की महफिलों में आते बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके जाते, ये वो, और रातों को अपनी चौपालों में और अपनी बैठकों में बैठकर डिस्कशंस करते हैं, पता है वो गए थे, ये था, पता था वो किया था। अब आप बताइए कि अल्लाह के नबी को कैसे पता चलेगा क्या था, जबकि वो आपस में ये बातें कर रहे हैं। तो ये गॉसिप, ये गपशप और ये बेकार बातें, यकीन कीजिए कि आमद के दिन हमारी नेकियों को ज़ाया कर देगा। बेहतरीन तरीका क्या होता है, कोई गलत चीज़ कहीं, कोई अच्छी देखी, कोई भी, उसको बताएं। और अक्सर मैं कहती हूँ कि गलत चीज़ है, ख़राब चीज़ है तो हमको बताएं, अच्छी चीज़ है तो दूसरों को बताएं। क्यों? कि आपकी अच्छी बात सुन के दूसरा भी आ जाएगा। बाज़ दफ़ा इतना गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं ना अपनी ज़ुबान का, कि जिसमें हमें फील भी नहीं हो रहा होता, लेकिन दूसरा बंदा हमारी बात से डर के अल्लाह के दीन से दूर हो जाता है। तो हमेशा अपनी ज़ुबान को सोच कर चलाएं। छुरी को भी सोच के चलाते हैं ना, कैंची को भी ऐसे नहीं चलाते, तो अपनी ज़ुबान को बहुत सोच के इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला इनकी सारी सरगोशियाँ लिख रहा है, तुम इनकी परवाह ना करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही भरोसे के लिए काफ़ी है। क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह की सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत कुछ इख्तलाफ बयान नहीं पाई जाती। देखिए, आपने अभी तक कितना कुरान पढ़ लिया, माशाल्लाह पाँचवा पारा है, आपको कोई एक बात से दूसरी में कॉन्ट्राडिक्शन दिखा? कहीं ये कहो कि अल्लाह एक है और अगली आयत में कहो नहीं नहीं दो हैं, कहा कि अल्लाह के रसूल की इताअत करो, आगे जाके कहा नहीं साथ किसी और की भी कर लो। ये खूबी है कुरान की, और 1400 साल से ये किताब मेरे आपके सामने मौजूद है इस बात की गवाह बनकर कि अल्लाह का कलाम है जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इसके बरक्स आपको होता है कि बाइबल और तौरात, हर साल इनके नए एडिशन निकलते हैं, इनके रिबीस और इनके पॉप्स जो भी अमेंडमेंट्स करते हैं इनकी किताबों में साथ, वो भी लिखी होती हैं। एक जगह कहीं सफ़र के दौरान नॉन मुस्लिम सिस्टर से बात हुई, तो मुझे पूछने लगी तुम कौन हो क्या, तो मैंने कहा मैं कुरान पढ़ाती हूँ ना, इस तरह बात शुरू हो गई हमारी। तो मुझे कहने लगी कि तुम किस वर्जन का पढ़ाती हो, मेरा ख्याल ये 2015 की बात है, तो कहने लगी कि तुम 2015 का वर्जन पढ़ाती हो कुरान का या पुराना। तो फिर मैंने उसको बताया कि इसका तो एक ही वर्जन है। इतनी वो हैरान, और माशाल्लाह फिर उसने इतना इंटरेस्ट लिया, और जो कुछ भी मैं उसको बता सकी। तो लोगों के लिए ये बात अनबिलीविंग है, यकीन नहीं आता इस बात पे कि इस कुरान में एक ज़बर ज़ेर का भी चेंज नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से अगली बात जो है ना, ये अफवाह साजी, इधर की बात उधर और उधर की इधर। औरतों में ये बात ज़्यादा ही होती है, गैर जिम्मेदारी से बात आगे करने लग जाती हैं, इससे बहुत ख्याज पड़ता है। किसी सोसाइटी का अमन चैन कब ख़राब होता है? जब वहाँ लोग बग़ैर सोचे समझे सुनी सुनाई बात आगे करते हैं। तो इस आयत पे अपने अमल को भी नोट करेंगे हम सारे कि बात को फैलाना नहीं चाहिए, समेटना चाहिए। व इज़ा जाहुम अमरुम मिनल अमनि अविल खौफ यज़ाऊ बिही, ये लोग जहाँ कोई इत्मीनान बख्श या खौफनाक खबर सुन पाते हैं इसको लेकर फैला देते हैं, हालांकि अगर ये इसे अल्लाह और अपनी जमात के ज़िम्मेदार असहाब तक पहुँचाएँ तो वैसे लोगों के इल्म में आ जाएँ जो इनके दरमियान इस बात की सलाहियत रखते हैं कि इसे सही नतीजा हस कर सके। तुम लोगों पर अल्लाह की मेहरबानी और रहमत न होती तो तुम्हारी कमज़ोरियाँ ऐसी थी कि चंद लोगों के सिवा तुम सब शैतान के पीछे लग गए होते। बस ए नबी, तुम अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपनी ज़ात के सिवा किसी और के ज़िम्मेदार नहीं हो। यानी अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्ली देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी का दिल कटता था, दुख होता था। ज़ाहिर है, देखिए जो मुखलिस होता है ना, जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, उसको एक बंदे की कमी और एक बंदे को नॉन सीरियस लेना उस दावत को चुभता है। तो दिल खट्टा होता था, दिल बुरा होता था, क्या हो गया अब्दुल्ला बिन उबई को, क्या हो गया इसके साथियों को। तो अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं, आप फिक्र नहीं करें, आप इतना रंज ना करें, आप अपना काम करें, आपका जो काम था अल्हम्दुलिल्लाह आप कर रहे हैं, आप इनको छोड़ दीजिए, बाकी रह गए दिल के खोटे लोग, उनको छोड़ें, उनका गम भी दिल से निकाल दें, क्योंकि दिल में गम होगा तो अल्लाह का काम नहीं होगा। बल्कि इसके बदले में क्या कीजिए आप, बहर दिल मोमिनीन, सच्चे मुखलिस साथी थोड़े हैं, जैसे भी आप उनको ईमान की और दीन की रगबत दिलाएं। क्या पता चला कि वो लोग जो दीन से उखड़े उखड़े रहे, जो दीन से पीछे पीछे रहे, प्यार ना माने, सख्ती ना माने, हमदर्दी ना माने, फिर उनको छोड़ दो उनके हाल पे, लेट देम गो, थोड़ा सा उनको स्टॉप दो। जब उनको कोई नहीं बुलाएगा ना, तो फिर उनको लगेगा कि वाकई हम में कोई खैर थी तो कोई बुलाता था। इसीलिए अल्लाह ताला आप देखिए कह रहे हैं कि अपने अहले ईमान को लड़ने के लिए उकसाओ। याद रखिए, किसी जगह इस दीन के नाम पर 100 लोग हों या 10 हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखना यह कि वो किस क्वालिटी के लोग हैं। क्वालिटी भी इतनी बड़ी नहीं होती, किस दिल के लोग हैं, उनका तज़किया कितना हुआ है। कितने थे अल्लाह के नबी के साथ मक्का में, और कितने थे हिजरत मदीना के वक्त पे, कितने थे बदर के वक्त, लेकिन चेंज लेकर आए। और कितने बड़े बड़े काफ़िले हैं आज मुसलमानों के, बिलियंस में आज हम आ गए, लेकिन आज हम कोई चेंज ही नहीं ला रहे। आज सारे मुसलमानों का ईमान जमा करके एक तराजू के एक पलड़े में डाल दीजिए, तो दूसरे पलड़े में आप देखिएगा कि 2-4 सहाबा का ईमान उससे बढ़ जाएगा। तो क्वालिटी मांगिए। इस्लाम हेड काउंट को नहीं मानता, बल्कि वो कहता है कि मोमिन तोले नहीं जाते, मोमिन तोला जाता है, मोमिन गिना नहीं जाता। एक मौके पे किसी ने अब्दुल्ला बिन मसूद की पतली पतली टांगों का मजाक उड़ाया, तो आपने फरमाया कि तुम्हें पता है कि अब्दुल्ला की एक टांग क़यामत के दिन ओहद पहाड़ से भी भारी होगी। तो अपने अंदर ईमान लेकर आएँ, और फिर सच्चे ईमान से एक बंदा खड़ा हो जाए। तन्हा चले थे, काफ़िला मिलता गया, लोग मिलते गए, काफ़िला बन गया। और भीड़ जमा कर लें, तस्किया नहीं, तरबिया नहीं, इखलाक नहीं, बोलना नहीं आता, तमीज़ नहीं है, तो फिर याद रखिए वो निरी खप रोलाई है, उसमें वो खैर नहीं है। तो अल्लाह अपने नबी को ये अपने नबी की पुख्तगी के लिए कहते हैं कि आप ना फिक्र करें, आप अपने काम में लगे रहे। वईद नहीं कि अल्लाह काफिरों का जोर तोड़ दे। तसल्ली कितनी अल्लाह ताला दे रहे हैं कि आज वाकई आप दबे हुए हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि अल्लाह आपको गलबा देगा। अल्लाह का ज़ोर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और इसकी सज़ा सबसे ज़्यादा सख्त है। जो भलाई की सिफारिश करेगा वो इसमें से हिस्सा पाएगा, और जो बुराई की सिफारिश करेगा उसमें से हिस्सा पाएगा। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है। ये बुराई और भलाई की सिफारिश मैं और आप कैसे कर सकते हैं? हदीस में आता है, जिसने किसी को किसी नेकी की तरफ दावत दी, फिर उस शख्स ने उसके कहने पर वो नेकी कर ली, तो बुलाने वाले, दावत देने वाले को उसकी नेकी में पूरे का पूरा अजर मिलेगा, और उसकी नेकी में कोई कमी नहीं होगी। और इसके बरक किसी ने गुनाह की रगबत दी और उसने उसके कहने पे वो कर ली, तो उसको उसके गुनाह में शामिल किया जाएगा। आज मेरे आपके लिए क्या नेकी है दूसरों को देने के लिए, लेने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं और आप, दर कुरान की दावत। आप देखिए, अब तो इतना आसान हो गया इसको सुनना, शायद इसीलिए हम ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तो ला सकते हैं तो बुलाइए, साथ ला सकते हैं तो लाइए, फ्लायर जाके घरों में दे सकते हैं तो दे दें। एक फ्लायर भी अगर इधर बचा रहता है, ये हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत बन सकता है कि हमने उसको ऐसे बंदे तक नहीं पहुँचाया जो कि यहाँ रहता था, उसको नहीं पता। हम कई दफ़ा सोचते हैं ना कि हम इधर लिंदेबर्ग में इतने साल से हैं, सबको पता है। कोई नहीं पता सबको। आप क्यों खुशफहमियों का शिकार है कि सबको पता है? इतने आप बड़े अच्छे काम नहीं भी कर रहे। इसलिए अपनी नियत करें, हर बंदा, जैसे आप माशाल्लाह देखिए हम कितनी सिस्टर्स जहाँ बैठी हैं अभी, अगर हम सब अपने अपने सेल फोन्स को देखें तो मेरे वाले 100+ नंबर तो हर एक के पास हैं। अगर हमारे वक्त में अल्लाह बरकत दे, 1-1.5 मिनट की कॉल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मैं कुरान सुन के आई हूँ, चलोगी कल, क्या होता है क्या आता है, चलो मैं तुम्हें ले जाऊँगी, अच्छा दूसरे को फ़ोन करती हूँ, फिर बात करेंगे। अगर 1-2 घंटा आज से कल तक लगाएं, तो कल छठा पारा जिसमें ख़जाना है, सूरत मायदा शुरू हो रही है, आपको अंदाज़ा नहीं वो कितनी एनरिच सूरत है, भरी हुई। आपके, चलो मेरी बहन तुमने 5 छोड़ दिए, कोई बात नहीं, कल से तुम्हें लेके चलती हूँ इंशाल्लाह। अब आप उसको बुला के भूल जाएं, आपका काउंटर डबल पे चला गया, आपका मीटर अब डबल चलेगा। आज भी आप में से जो अपनी गाड़ी में अपने साथ 1 को लाया ना, तो उसका यहाँ 2 का दर लिख रहा है अल्लाह ताला। 3 आए हैं तो 3 का, अगर किसी की गाड़ी में जगह थी तो उसने अपना जगह छोड़ी है। तो कोशिश करें एक सीट खाली ना रहे, अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान कर दे। और यकीन करें ये वक्त है, इस वक्त आज ज़िंदगी है, कल नहीं रहेगी, कोई नहीं हमें बाद में बुलाएगा। और आज मैं और आप लोगों से मोहब्बत का हक किसी तरह अदा कर सकते हैं, जिस रंग से कोई मानता है उससे चलो, बाज़ार जाना है चलो आओ, पहले इधर चलो फिर ले जाऊँगी, ग्रोसरी ख़रीदनी है ला दूँगी, पहले इधर चलो, चलो मेरे साथ। आपको पता है छोटे बच्चों को लेके आना पड़ता है, स्कूलों में आते हैं बच्चे, एक दफ़ा आते हैं फिर उनका जाने को दिल नहीं करता। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम दूसरों की हिदायत का ज़रिया बन जाएँ। फरमाए वाइज़ा खुशी तुम भी तहीतिन फ़ाहसन मिन हा और इन अल्लाह का नाला कुल्ली शईन हसीबा। अब ये सलाम का तरीका है, ख़ास तौर पे जो बच्चे बच्चियां यहाँ रहते हुए अस्सलाम वालेकुम कहने को ज़रा बुरा समझते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं, हाय हेलो बाय और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, तो इस आयत में आपको बहुत खूबसूरत अहकामात मिलेंगे। और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करें तो इसको इससे बेहतर तरीके के साथ जवाब दो या कम अज़ कम इसी तरह। अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं, वो तुम सब को उसके आमद के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। इस्लाम क्या है? मुस्लिम कल्चर। अस्सलाम वालेकुम, यू आर पीसफुल, क्या मतलब? मैं तुम्हारी गीबत नहीं करूँगी, मैं तुम्हें बुरा नहीं कहूँगी। इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला से कि आपने फ़रमाया कि बेशक सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है। अल्लाह का नाम क्या है? अस्सलाम। फरमाया जिसे इसने ज़मीन में नाजिल किया, बस इसको आपस में फैलाओ, आम करो, रिवाज दो। जब कोई आदमी लोगों को सलाम करता है और वो इसे जवाब देते हैं तो सलाम करने वालों को इन पर फजीलत हासिल होती है, यानी अल्लाह की नज़रों में वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, और अगर वो जवाब ना दें तो ऐसे बंदे जवाब देते हैं जो इनसे बेहतर और पाकीज़ा हैं। कौन? फरिश्ते। ये सिलसिला तो सहीहा की हदीस है 1607। तो सलाम का जवाब देना भी अच्छा है, यानी पहले सलाम करना भी फ़र्ज़ है, और कोई सलाम कर दे तो उसका जवाब देना तो ज़्यादा लाजिम हो जाता है। इसलिए कि ऐसी बातें बंदे का मूड भी बताती हैं ना। बाज़ दफ़ा कोई छोटी उम्र का इस्लाम करे या मासी आके करे तो सिर्फ मुंह से हिला देते हैं, ठीक है ठीक है, ये भी अच्छी बात नहीं है, पूरी रग़बत से करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तीन लोग ऐसे हैं जिनकी मैं ज़मानत लेता हूँ कि अगर वो ज़िंदा रहे तो अल्लाह उनके लिए काफ़ी रहेगा, यानी उनके सारे मामलात को अल्लाह समेटेगा, और अगर फौत हो गए तो जन्नत में दाखिल होगा। वो तीन कौन है? इनमें से एक वो शख्स जो घर में सलाम करके दाखिल हो। कितना आसान है, आज जाएं घर में अस्सलाम वालेकुम करें, बस अल्लाह इसका ज़ामिन बन जाता है। यदबुल मुफ्रद की रिवायत है 836। बस वह खाली घर होता है तो भी करें, आगे से जवाब आ जाए तो डरे नहीं हैं। बस दफ़ा फरिश्ते जवाब दे सकते हैं, शैतीन दे सकते हैं, और बाज़ वह घर में कुछ सोया होता है आपको पता ही नहीं, वो उठ जाएगा तो आप डरने से तो बच जाएंगे ना, बस ऐसे इशूज़ बन जाते हैं। आपने फरमाया कि बखील है वो शख्स के जो सलाम में बुखल करे, पहल ना करे, तो बहरहाल अस्सलामु अलैकुम कहा करे। और आप सब सिस्टर्स बच्चियां जो स्कूलों कॉलेजों में, तो अपनी मुस्लिम फ्रेंड्स को मिले तो अस्सलामु अलैकुम कहा करें। हाँ, नॉन मुस्लिमर्स को हेलो कहें, हाय के, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन कम अज़ कम आपको अपने आपस में इस चीज़ को आम करना चाहिए और इसका मानी भी मफहूम समझ आना चाहिए। अब इसके बाद दोबारा मुनाफिकों का किस्सा, ये साथ साथ चलेगा क्योंकि अभी ग़ज़वे उहद का असर बाकी था, और एक वाक़या तो हो जाता है उसके बाद कई महीने तक उस पर डिस्कशंस होते रहते हैं। तो मुनाफिकों के बारे में कुछ लोगों का ख्याल था कि ये मुसलमान है, कोई बात नहीं, इन्होंने कमी बेशी कर दी। कुछ में ईमान की हरारत ज़्यादा थी, वो कहने लगे नहीं नहीं पकड़ो इनको, कत्ल कर दो, ये तो आस्तीन के सांप है। तो इस किस्म की डिस्कशंस को अल्लाह ताला ने एक न्यूट्रल फॉर्म दे दी और फरमाया फ़मालकुम फ़िल मुनाफ़िकीन फ़ियतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू। फिर तुम्हें क्या हो गया कि मुनाफ़िकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान दो राय पाई जाती हैं, हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई हैं इसकी बदौलत अल्लाह इनको उल्टा फेर चुका है। देखिए उल्टा फेरना यहाँ क्या है, जिस तरह हम कहते हैं फ़लाँ की तो मत मरी गई है, यानी अल्लाह ताला मुनाफिकों की खोपड़ी के घूमने या उनके उलट होने की बात क्या बताते हैं कि इनको दीन की बातें समझ नहीं आती। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा है किसी इंसान के ऊपर कि उसको अल्लाह का दीन जो इतना साफ़ सुथरा खूबसूरत है वो ना समझ आए और उसके ऑपोजिट अमल करने लग जाए। अतुरीदून अन तहदू मन अदल्लल्लाह, क्या तुम ये इरादा करते हो कि जिसको अल्लाह ने हिदायत नहीं बख्शी तुम उसको हिदायत दो? क्या पता चला कि जो इस्लाम को नेगेटिव एंगल से देखेगा ना उसको हिदायत नहीं मिलेगी, हालाँकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से हटा दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो ख़ुद काफिर हैं इसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम और वो सब यकसा हो जाएं, कहाँ दुनिया में भी और आग में भी। लिहाजा इनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ। यह आयत क्या बताती है कि जिनके दिलों का निफाक ज़ाहिर हो जाए या पता लग जाए ना कि ये दीन के मामले में सीरियस नहीं है तो उनसे अवॉइड करना चाहिए, वरना क्या होगा आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर भी वो बातें आएंगी। तो अच्छी दोस्तियाँ करनी चाहिए। कब तक दोस्ती ना करो? जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना जाएं, और अगर वो हिजरत से बाज रहे हैं तो जहाँ पाओ इनको पकड़ो और कत्ल करो, इनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। हिजरत करना, कुछ छोड़ना क्राइटेरियन है ईमान का। आप ख़ुद से पूछें, मैं भी पूछती हूँ, मैंने अल्लाह के लिए क्या छोड़ा? आप कहेंगे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मक्का में होते तो मदीना चले जाते हिजरत करके, पाकिस्तान बनते वक्त हिजरत करते तो चले हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते। तो याद रखिए कि ये बड़ी बड़ी हिजरतों के मौके हमेशा नहीं आते, किसी किसी की ज़िंदगी में आते हैं। छोटी छोटी हिजरतें करें, कोई चीज़ सोचें इस वक्त आप भी और मैं भी, जो आपको बड़ी पसंद है, आज पता चल गया नहीं अच्छी, अल्लाह को पसंद नहीं, बैठे बैठे चुपके चुपके कि अल्लाह मैं उससे हिजरत करती हूँ। हिजरत क्या छोड़ना, कोई गीबत से हिजरत कर ले, जो भी दिल चाहे। अब मैं क्या बोलूँ, अभी तक जो सुने उसमें से कुछ सोच लें, कोई आदत, कोई बात, कोई रूटीन, कोई गलत चीज़ कि अल्लाह ताला आज से तेरे लिए छोड़ती हूँ। और आप अगर इस पूरे सफ़र में ये छोटी छोटी नियतें करते गए ना, आप देखिएगा एंड तक आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे इंशाल्लाह। फरिश्तों में अल्लाह ताला आपका जिक्र करेंगे। फरिश्तों वो थी जो सिर्फ पारा नहीं सुनने आई थी, वो चुपके चुपके मुझसे बातें करके मेरे करीब होने आई थी, और अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। अलबत्ता वो मुनाफिक इस हुक्म से मुस्तस्ना यानी एग्जेम्प्ट है जो किसी ऐसी कौम से हो जिनके साथ तुम्हारा कोई माहदा हो। इस तरह वो मुनाफिक भी इससे मुस्तस्ना हैं जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, ना तुमसे लड़ना चाहते हैं ना अपनी कौम से। अल्लाह चाहता तो इनको तुम पर मुसल्लत कर देता और वो भी तुमसे लड़ते। लिहाजा अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाएँ और लड़ने से बाज रहें और तुम्हारी तरफ सुलह आश्ती का हाथ बढ़ाएँ, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन पर दस्त राजी की कोई सबील नहीं रखी। एक और किस्म के मुनाफिक तुम ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी, मगर जब कभी फितने का मौका पाएं तो इसमें कूद पड़ते हैं। ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबले से बाज न रहें और सुलह सलामती तुम्हारे आगे पेश ना करें और अपने हाथ ना रोके रखें, तो जहां वो मिले इनको पकड़ो और मारो, और इन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली हुज्जत दे दी है। वैसे तो ये बड़ी मुश्किल आयतें हैं। आप किसी मुस्लिम मुल्क की जो खारिजा पॉलिसी होती है ना, यानी फॉरेन अफेयर्स, एक मुस्लिम मुल्क दूसरे नॉन मुस्लिमों से कैसे डील करे, इसमें बहुत से हिंट्स हैं, लेकिन मेरे आपके लेवल में इसमें बहुत छोटे छोटे हिंट्स थे। सब नॉन मुस्लिम बुरे नहीं होते, सब नॉन मुस्लिम इस्लाम दुश्मन नहीं है, सब नॉन मुस्लिम मुसलमानों के दुश्मन नहीं है। कुछ बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, कुछ साथ रहते हैं, काम करते हैं, कोई लीग है, तो जैसा वो करे वैसा तुम करो। इस्लाम का देखिए मिजाज, कुछ लोग कहेंगे सारी आयतों को छोड़ के आखिरी देखो देखो इनको पकड़ो और मारो। किन को पकड़ो मारो, जो मैदान जंग में आ चुके हैं उनको पकड़ोगे? कोई दुश्मन फौज आए और उसको ये तो नहीं कहते इनको फूल पेश करो? तो यहाँ से आपको इस्लाम का अदल भी दिखता है। आप मैं अपने इर्द गिर्द नेबर्स में देख लें, कॉलेजेस में, स्कूलों में देखें, जॉब जो करते हैं उनको, अपने कुलीग्स को देखना है, आपको हर तरह के नॉन मुस्लिम दिखेंगे। करें क्या आप और मैं, चलिए इससे अमल लेते हैं। फाइंड कीजिए कि किसका दिल सबसे नरम है, न्यूट्रल, स्माइली, फ्रेंडली। बस समझ लें कि ये शाकिर बंदा है। जो बंदा खुश रहे ना बस उस पर काम करें, जो जले बुने उनको छोड़ दें, अभी उनको खुश होने दे पहले, क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। फिर आप उसको एक दिन एक चॉकलेट दे दें ऐसे ही, हेलो हाय हाउ यू डूइंग, इट्स फॉर यू, चलो जी बात खत्म, बस इससे ज़्यादा ना बोलें। दो चार दिन के बाद बैठे फारिग, आओ कमन चाय पीते हैं, फिर चाय पीने के दौरान बातें, व्हाट्स योर हॉबीज़, ये वो, उससे प्यारी प्यारी बातें अगले की सुने, दो चार मुलाकातों में उसकी सुने। जब उसका आपका ट्रस्ट डेवलप हो, प्यार हो, मोहब्बत, और जो आप उसको दे सकें, जो निछावर कर सकें उस पर करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉड, लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्काई, लुक एट दिस, कायनात से बात शुरू करें। मत इस्लाम पे, मत कुरान पे, मत कॉन्ट्राडिक्ट्री बातों पे बात करें। गॉड लुक एट हेवन, चलो दिस 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 दिस, बस रास्ता खोल दे। यकीन करें अगर उसका दिल अल्लाह ने चाहा तो हिदायत पे लगना होगा तो लग जाएगा। तो ढूंढें नेकियां बिखरी हुई आपके इर्द गिर्द, ये मेरी आपकी नेकी हैं। मैं तो अपने आप को कहती हूँ ना मैंने ज़ुबान सीखनी है ना मेरे पे हुज्जत होगी, सब कह दूँगी अल्लाह मुझे नॉर्वेजियन ही नहीं आती थी, मैं कैसे नॉर्वेजियनों को देती। हाँ मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आप नॉर्वेजियन लोगों से बातें करें, समझ आइए। अपने दिल में दर्द पैदा करें, दिल में जितनी तड़प और मोहब्बत है मैं उनके लिए दुआ तो कर सकती हूँ, उठते बैठते चलते और कुछ ना आप में करें, दुआ किया करें इन लोगों को देखकर। जहाँ चार लोग देखें अल्लाह इनको आग से बचा ले, अल्लाह इनके साथ नरमी कर, अल्लाह इनको ना जलाना। आप देखिएगा कि आपके दिल में गुदास आएगा ना, आहिस्ता आहिस्ता खुद बखुद अल्लाह आपके लिए रास्ते खुलता जाएगा।